खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप खुदावंद में मुतमिन हैं और उसकी पहचान और उसके फजल की उस बहती नदिया में से हर रोज सैर हो रहे हैं, हर रोज तरोताजा हो रहे हैं, क्योंकि उसका फजल हम सब के लिए काफी है। उसका फजल हमारी जरूरियात को और हमारी कमजोरियों में क्या करता है, हमारी मदद करता है। आपकी खिदमत में खुदा का बंदा पादरी फैसल हासर है कि फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के मौजजात जो उसने जमीन पर रहते हुए किए उनमें से सीखें। सो आज सबक नंबर 3 को, जिसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने पतरस की सासू माँ को क्या दी, शिफा दी। इससे पहले कि इस पैगाम को, इस कहानी को, इस मौजजे को जाने, आए हम खुदा के हजूर झुकें और जब भी हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, 3 बातें अपने जहन में रखें जो बहुत ही जरूरी हैं। इंसान होते हुए हमें इन 3 बातों की बहुत ही अहम जरूरत है। पहली बात, अपना बोझ, अपनी फिक्र खुदावन खुदा को दें, और वो तमाम बोझ, उसमें गुनाह हो सकता है जो जुबानी तौर पर, अकली तौर पर, या किसी को बुरा भला कहा गया, उसमें अपना बोझ उसे दें, क्योंकि वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब जब हम गुनाह के जुए के नीचे दब जाते हैं, गुनाह का बोझ हमें दबाने की कोशिश करता है, फिक्रें इस दुनिया की और फिर हमारी अपनी जाति या खानदानी लड़ाई झगड़े। पहली बात, सबसे पहले क्या है, अपना बोझ, अपनी फिक्र खुदावंद यीशु मसीह को दें। दूसरी बात, दुआ करें। दुआ करें, क्योंकि दुआ जब हम करते हैं तो हम अपनी जात पर यकीन नहीं करते, बल्कि कादरे मुतलिक को कहते हैं, मुझे हिकमत और दनाई दे। दुआ जब करनी है तो कह, खुदावंद खुदा, मुझे हिकमत और दनाई दे, ताकि तेरे कलाम को जब मैं सुनूं, जब मैं पढ़ूं, तो मैं खुदा खुदा तेरे कलाम की गहरी बातों को समझ सकूं और खुदा खुदा उनकी हिकमत और दनाई हासिल करके अपनी जिंदगी में फलदार जिंदगी पैदा कर सकूं। सो यर्मिया 33 बाप उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदावंद वादा करता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। सो दूसरी बात, हमें दुआ करनी है हिकमत और दनाई के लिए, ताकि हम खुदा के कलाम में से उसकी गहरी और पोशीदा बातों को समझकर, सुनकर अपनी जिंदगी में क्या दे सकें, जगह दे सकें। और तीसरी बात, अमल करना। खुदा बाप, मुझे कुव्वत और ताकत दे कि तेरे कलाम पर अमल करने वाला और करने वाली बनूं, क्योंकि याकूब कहता है कि महज कलाम सुनने वाले ना बनो, बल्कि जो सुना हुआ कलाम है उस पर अमल करो। सो ये 3 बातें बहुत ही जरूरी है, अपना बोझ यीशु मसीह को देना, यीशु मसीह से दुआ करना खुदा बाप से यीशु के नाम में कि मेरी मुझे हिकमत और दनाई दे, और फिर उसे कहना मुझे अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। सो आए हम खुदा के जो झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, हम बड़े फरोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी हिकमत और दनाई चाहते हैं, अपनी बोझ अपनी फिक्रें तुझे देते हैं। और खुदावंद, आज का कलाम, आज जो मौजजा हम यीशु मसीह की, खुदा खुदा जमीनी जिंदगी का जो उसने किया, जब सीखते हैं तो हम सब की बड़ी ही रहनुमाई हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आप जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, बाइबल लेकर आए हैं या आपके पास मौजूद है, मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मरकस की अंजील, उसका पहला बाप उसकी 29वीं आयत से 31वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का मुतालिया करते हैं तो मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील, इन चारों अनाजील में यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के वो तमाम वाकयात जो यीशु मसीह ने बिताए जमीन पर, वो दिन क्या किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो कहां पर दुआ करता था, कहां पर रहता था, किन लोगों से उसकी गुफ्तगू हुई, किस तरह उसने लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाया, वो तमाम बातें यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर कब्र में उतारे जाने और कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहने के बाद आसमान पर उठाए जाने के वो तमाम वाक्यात क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। सो इस वाक्या को जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है पतरस की सांस को यीशु मसीह ने क्या दी, शिफा दी। इस हवाले को हम तीनों अनाजील में देखते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हवाला आपको तीन अनाजील में मिलेगा। पहले आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 8 बाप उसकी 14 और 15 आयत में। जो हवाला आज मैंने चुना है वो है मरकस की इंजील 1 बाप उसकी 29वीं आयत से 31वीं आयत। और तीसरा वाक्य यही जो रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, लूका की इंजील उसके 4 बाप की 38वीं और 39वीं आयत में। लेकिन आज मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगा, आप इन हवाला जात को लिख सकते हैं और आपके लिए रेफरेंस मैं यहां पर छोड़ दूंगा। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ये वो तीसरा मौजजा है जो यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में किया और बाइबल मुकद्दस में जो लिखे गए हैं। बाइबल मुकद्दस में कुल 37 मौजजात हैं जो यीशु ने किए हैं, जो लिखे गए हैं। लेकिन हम आज तीसरे मौजजे पर गौर करेंगे। क्या लिखा है 29वीं आयत में, और वो फिलफोर अबादल खाना से निकलकर यकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आया। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफोर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उसकी खिदमत करने लगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आपके लिए और मेरे लिए क्या हो, हौसला अफजाई का वसीला ठहरे। अजीजो, खुदा का खादम और आपका पासबान होते हुए मेरी ये रूहानी जिम्मेदारी है कि आपकी रूहानी खुराक का क्या करूं, बंदोबस्त करूं। इसलिए खुदावन खुदा ने जब मुझे बुलाया कलीसिया की खिदमत के लिए, और खासकर जो ग्रेस बाइबल चर्च आरवाला की कलीसिया खुदा ने मुझे दी पासबान के तौर पर, यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए खुदा की हिकमत और दनाई को हासिल करता रहूं, ताकि आप उसकी पहचान में और रूहानी उस सफर में जो आपका और मेरा है उसमें हम बढ़ोतरी करते जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस हिस्सा में हम देखेंगे, यहां पर यीशु मसीह है, पतरस है, पतरस की सांस है और उसके साथ वो लोग हैं। सो यहां पर जो पहली बात, यीशु मसीह इस शहर में है जिसे कुफर नहूम कहते हैं। यीशु मसीह अभी अभी इबादतखाना से बाहर आया है और वो किन लोगों के साथ है, यकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आया। अभी अभी यीशु मसीह ने इबादत खाना में कलाम पेश किया है, लोगों को शफा दी है, लोगों को खुदा के पैगाम की तालीम देकर। जब यीशु मसीह वहां से बाहर आता है तो यीशु मसीह कहां पर जाता है, पतरस के घर में, पतरस की जो सासू माँ है। पहली बात नोटिस करें, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि पतरस की शादी नहीं हुई। बाइबल मुकद्दस तीन हवाला जात बयान करती है जिसमें ये बात वाजिया है कि पतरस की शादी हुई थी, और पतरस की शादी हुई थी यहां पर उसकी सासू माँ के बारे में कहा गया है। दूसरी बात, यहां पर जो नाम आपको मिलता है शमौन और अंद्रियास के घर, शमौन की सास। पतरस को बहुत दफा बाइबल मुकद्दस शमौन पतरस भी कहती है और या फिर शमौन काला या पतरस भी कहती है। इसलिए यहां पर जो बात हो रही है वो पतरस के बारे में हो रही है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 4 बाप। आप सबको याद होगा जब यीशु मसीह बियाबान से आया, अबलीस से अजमाया गया, तो सबसे पहले यीशु मसीह कहां पर जाता है, खुदा की मनादी करते हुए, बादशाही की बातों को सिखाते हुए। मत्ती 4 बाप उसकी 18 आयत को देखें, वहां पर यूं लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए यसु मसीह यहां पर लफ्ज उसका उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसने यानी यसु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माही गीर थे। सो शमाउन और इंद्रियास ये दोनों भाई थे। और यहां पर हम देखते हैं मरकुस की इंजील में कि यसु मसीह उनके घर गया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है बार बार कि यसु मसीह का अपना घर कोई नहीं था। वो बादशाहों का बादशाह होकर आसमान और जमीन छोड़कर इस जमीन पर आया और वो किसी भी चीज का क्या थे मालिक नहीं था। उसने जायदाद हासिल नहीं की, उसने मकान नहीं बनाए, उसने महल नहीं बनाए। उसका मकसद यही था कि अपनी बादशाही को छोड़कर इस जमीन पर आए ताकि हर एक को खुदा की बादशाही के बारे में बता सके। सो यसु मसीह ने बड़ी ही सादा जिंदगी इस जमीन पर गुजारी। उसका ज्यादा वक्त दुआ में, लोगों को शफा देने में, लोगों की रहनुमाई करने में और बियाबानों में अलहदगी में खुदा के साथ दुआ करते हुए, खुदा को से हिकमत और दनाई हासिल करते हुए हम सबको नमूना देने के लिए गुजारा। इसीलिए यसु मसीह के बारे में हम देखते हैं जब उसकी पैदाइश हुई तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी, शहर में कोई जगह नहीं मिली, बल्कि उससे कहां पर जगह मिली, जानवरों की उस खुरली में। और जब वो बड़ा होता है तब वो यसु मसीह आगे चलकर हम देखेंगे अपने शिगिर्दों को कहता है, जब लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि हम तेरे पीछे आना चाहते हैं। यसु मसीह ने कहा कि लूंबड़ियों के भट्ट यानी कि जहां पर लूंबड़ियां रहती हैं उन सुरंगों में, लूंबड़ियों के भट्ट और हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। बार बार हम यसु मसीह को देखते हैं यसु बियाबान में गया, यसु सुबह हुई सब अपने, जब शाम हुई और सब अपने अपने घर को गए और यसु बियाबान में गया और वहां पर दुआ, सारी रात उसने दुआ में गुजार दी। सो यसु मसीह यहां पर नजर आता है जब वो नासरत से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कफरनहूम में आया है जो के गलील की झील के साथ नजदीक शहर है जिसमें यसु मसीह ने अपनी खिदमत को किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यसु मसीह किसके घर में आया है, शमाउन यानी पतरस के घर में। सो पतरस की पहली बात शादी हुई थी, उसके बच्चों का हमें जिक्र नहीं मिलता, बीवी का नहीं, लेकिन उसकी सासू मां के बारे में बताया गया है, उसके भाइयों के बारे में बताया गया है कि शमौन पतरस जो कहलाता है उसके दो भाई कौन थे, इंद्रियास उसका भाई, और ये मच्छेरे थे। इनको जब यसु मसीह ने बुलाया तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या किया, यसु के पीछे हो लिए। और यसु मसीह ने उनसे वादा किया था कि तुम अब जो मछलियां पकड़ते हो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा, तुम अब से आदमियों को घेरोगे ताकि वो आसमान की बादशाही के क्या हो, वारिस हो। सो यहां पर यसु मसीह क्या करता है, शमौन की सास जो तप में, जो बीमारी में, जो मुश्किल में पड़ी है, उसको जब देखता है तो लोगों ने यसु मसीह से दरखास्त की है तो यसु मसीह क्या किया है, उसका हाथ पकड़कर, उसे हाथ बढ़ाकर छुआ और उसकी तप यानी कि उसका बुखार उतर गया। यह चौथा मौजजा है। पहले में कोड़ी को यसु मसीह ने छुआ वो पाक साफ हो गया, दूसरे में उस रूमी दरोगा के, उस रूमी सूबेदार के नौकर को यसु मसीह ने जुबान ही से कह दिया वो शफा पा गया। और तीसरा हम देखते हैं कि यसु मसीह यहां पर क्या करता है, पतरस की सांस को हाथ बढ़ाकर छूता है और उसको क्या मिलती है, शिफा मिलती है। सो कभी भी ये बात ना सोचें, यसु मसीह आपके और मेरे लिए दर्द रखता है, यसु मसीह आपके और मेरे लिए जज्बात रखता है, यसु मसीह को आपकी और मेरी फिक्र है, वो आपकी मुश्किलात में, वो आपकी परेशानियों में, वो आपके जैसे भी हालात हों वो वफादार है। इसलिए कभी भी इस बात को ना भूलें कि यसु मसीह मौजजात नहीं कर सकता, वो मौजजात का खुदा है। सो वो ना सिर्फ ना पाक लोगों को पाक साफ करता है, वो बीमारियों को भी दूर करता है। और मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के इन मौजजात को सुनकर, जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है रोमियो 10:7 उसकी 17 आयत, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इससे यही मुराद है कि मसीह का वो कलाम, मसीह की वो बातें, मसीह के वो मौजजात जो उसने उस दौर में किए, आज कर रहा है और आने वाले वक्त में करेगा, और वो मौजजात का खुदा है। इसलिए यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, यकसा है, वैसा ही है। सो यीशु मसीह ने शमौन की सांस को शिफा दी, और उसकी सांस क्या करती है, वहां पर पड़ी रही नहीं। क्या लिखा है, उसका हाथ पकड़ उस पकड़ कर उसे उठाया, और तब उस पर से उतर गई और वो उसकी खिदमत करने लगी। हमें यीशु मसीह की खिदमत करनी है। मुझे नहीं पता कि आज आपकी जिंदगी में कौन सी रुकावट है जो आपको रोके हुए है। वो आप अपनी रुकावट खुद हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, दौलत हो सकती है, दुनिया हो सकती है, दुनिया की बातें हो सकती है, ऐशो इशरत हो सकती है, या फिर अबलीस या उसके झूठ। उसकी खिदमत से अगर आपको कोई रोक रही है चीज, तो वो आप हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर हमने दिल में ठहरा लिया है कि नेकी करें, तो कौन हमसे बदी करा सकता है। इसलिए आपको खुदा ने ये इजाजत, ये आजाद मर्जी दी है कि उसकी खिदमत करें। सो खुदा रूह है, हमें उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करनी है। इस मौजजे से मेरी यही दुआ है कि हम यीशु मसीह को कहें कि तू मौजजात का खुदा है, मेरे लिए मौजजा कर। आप खुद एक मौजजा है, हम मौजजा हैं। क्यों? आज हम सांस रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, ये मौजजा है। आज हम जिंदा हैं, ये मौजजा है। यीशु हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ये मौजजा है। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर कभी भी शक करने की जरूरत नहीं। अपने हर हालात में उस पर भरोसा करें, उसकी खिदमत करें। और वो खिदमत किस तरह है? दूसरों को बताना, दूसरों तक उसका पैगाम लेके जाना, दूसरों को बताना कि हाँ वो वफादार है। हम बेवफा हो सकते हैं, वो बेवफाई नहीं कर सकता। सो खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलते हैं अगले हिस्सा में यीशु मसीह के मौजजात के साथ, आपकी और मेरे ईमान की तरक्की के लिए। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, इस पैगाम के वसीला से बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको बड़ी बरकत दे। और खुदावंद, हम सब तेरी खिदमत करें, अपनी जब बीमारियों में से रहाई पाते हैं तो तेरी खिदमत पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से करें। इस पैगाम के वसीला से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। फिर मुलाकात करेंगे खुदावंद के फजल से।